ओम शांति। आज हम आपको बहुत सुंदर एक यात्रा पर ले चलते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ये 80 साल की यात्रा कैसे संपन्न हुई, इसकी शुरुआत स्वयं परमपिता परमात्मा ने 1936 में दादा लेखराज के माध्यम से किया। दादा लेखराज बहुत ही संपन्न परिवार के थे, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे और स्वभाव से बहुत दयावान, उदार दिल, कई मूल्यों से सुसज्जित उनका जीवन था। भक्ति भावना से पूर्ण जीवन में उन्होंने लगभग 12 गुरु किए थे और हर गुरु से कोई न कोई विचित्र अनुभव था, इसलिए उनकी तलाश और आगे बढ़ती थी कि आखिर भी सत्य क्या है। एक समय का अनुभव आपको बताती हूँ कि पिताश्री ब्रह्मा बाबा के घर में नामकरण का दिन था, काफी मेहमान आए हुए थे और अचानक गुरु की टेलीग्राम आई और उस टेलीग्राम के अंदर ये लिखा था कि वो अर्जेंट मिलना चाहते हैं। पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने जाने की तैयारी की, परिवार के सभी सदस्य ने रोकना चाहा कि ये नामकरण का कार्यक्रम पूरा हो जाए उसके बाद आप जाइए। पिताश्री जी ने उस वक्त यही कहा, गुरु का बुलावा काल के बुलावे के बराबर है, जिस तरह अगर काल आ जाए तो हम ये नहीं कहेंगे भाई हमारे घर में नामकरण चल रहा है, बाद में ले जाइए। ठीक इसी तरह गुरु का इतना रिगार्ड कि उनका जैसे ही मैसेज मिला तुरंत निकल पड़े, जैसे ही गुरु के पास पहुंचे तो गुरु ने उस वक्त दादा लेखराज से कहा कि मुझे 10,000 रुपए की आवश्यकता है। 1936 की बात है, जब आने आने की चीजें मिलती थी तो 10,000 आज के कितने बराबर हो जाते थे, परंतु पिताश्री जी ने बिना कुछ पूछे क्यों चाहिए, कैसे इतने पैसे की आवश्यकता पड़ी, बिना कुछ पूछे ही 10,000 निकाल करके दे दिया। परंतु गुरु जी के मन में आया कि मुझे बताना चाहिए इन्हें कि मुझे ये पैसा क्यों चाहिए, और तब गुरु जी ने कहा कि मेरे एक शिष्य सट्टे में हार गया है, उसकी इज्जत बचाने के लिए ये पैसे की आवश्यकता पड़ी है। तब दादा लेखराज को ये महसूस हुआ कि अगर एक शिष्य को एक सट्टे की आदत से नहीं मुक्त कर सकते हैं तो वो हमारी गति सदगति क्या कर सकेंगे। इस तरह से एक और गुरु की खोज में और ऐसे करते करते 12 गुरु उन्होंने जीवन में किए। लेकिन एक समय था कि जब बैठे थे और अचानक वो ध्यान मग्न हो गए और उन्हें विष्णु के विभिन्न स्वरूप का साक्षात्कार होने लगा। अत्यंत खुशी थी कि शायद आज मुझे अपनी भक्ति का फल प्राप्त हो रहा है, और इतनी खुशी थी। लेकिन जैसे एक संदेश साथ में सुना, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, समझ नहीं पा रहे थे कि ये वरदान था, ये संदेश था, ये क्या था और कौन करा रहे हैं, कौन ये मैसेज दे रहे हैं, समझ नहीं पाए। परंतु फिर भी बहुत खुशी थी क्योंकि पिताश्री जी के जीवन की धारणा ये थी कि प्रतिदिन गीता का पाठ अवश्य करते थे और बिना गीता के पाठ किए वो कोई भी कार्य आरंभ नहीं करते थे। फिर चाहे कोई ग्राहक ही क्यों ना आ जाए, लेकिन वो यही कहते थे कि ग्राहक के कारण हम अपने धर्म को थोड़ी बाजू पर रख देंगे, और इसीलिए ग्राहक वेट कर सकते हैं लेकिन भगवान की भक्ति पहले करना है। हीरे जवाहरात के व्यापार के कारण उनका संबंध बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ होता था, जैसे नेपाल के राजघराने के साथ, उदयपुर के राजा के साथ और क्वीन विक्टोरिया के साथ भी। उस कारण उनका बिजनेस की एक ब्रांच बॉम्बे में भी थी, हैदराबाद सिंध में थी और कलकत्ता में थी। इन तीनों जगह पर आना जाना उनका चलता था। जब ये दिव्य अनुभव हुए तो पिताश्री जी को लगा कि शायद गुरु जी की कृपा से ही मुझे ये अनुभव हुआ है, इसलिए उन्होंने तुरंत एक पत्र लिखा गुरु जी के नाम पर कि आपकी कृपा दृष्टि से मुझे ये दिव्य अनुभव हुआ और ये संदेश मिला, परंतु उसका मर्म समझ नहीं पाया, कृपा करके इसको स्पष्ट करें। तब गुरुजी ने पत्र लिखा, तब 12वें गुरुजी ने पत्र लिखा कि मेरे जीवन में अभी तक मुझे ऐसे कोई दिव्य अनुभव नहीं हुए हैं, और इसीलिए अगर आपको ये दिव्य अनुभव हुए तो उसका स्पष्टीकरण मैं कैसे कर सकता हूँ, शायद भगवान ने ही आपकी भक्ति का फल आपको दिया है और इसीलिए वही आने वाले समय में इसका स्पष्टीकरण कर सकेंगे। तब पिताश्री जी को लगा कि अगर गुरु जी को भी अभी तक ऐसे अनुभव नहीं हुए तो शायद ये तो भगवान ही कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ करवाना चाह रहे हैं। और इसीलिए जब एक दिन वो कलकत्ता जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि बनारस में उनके एक मित्र रहते हैं तो शायद कुछ दिन वहाँ एकांत का समय मिलेगा और उस एकांत में उनको ये उत्तर प्राप्त हो सकता है। इसीलिए बनारस में उतर गए। बनारस में एक दिन शाम के समय में वो गंगा घाट पर चले गए और वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ गए इसी अध्ययन में कि आखिर भगवान क्या कहना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। तभी वो फिर से दिव्य ध्यान की स्थिति में चले गए और उस ध्यान की स्थिति में उन्हें चार साक्षात्कार हुए। प्रथम साक्षात्कार जो हुआ उन्हें कि इस संसार का महाविनाश और जैसे आग के गोले ऊपर से गिर रहे हैं, नीचे धरती को स्पर्श करते लाखों लोग मरते जा रहे हैं, यह देखा। दूसरा दृश्य इसके बाद उन्होंने देखा कि किस तरह जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, इन भेदों के कारण लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और एक खुने नाहक खेल हो रहा है। उसके बाद तीसरा दृश्य उन्होंने देखा प्राकृतिक प्रकोप का, और कहीं सुनामी उठ रही है, कहीं भूकंप हो रहे हैं, कहीं ज्वालामुखी प्रकट हो रही है और इतने लोग मरते हुए देखे कि ये दृश्य वो देख नहीं सके। तब उन्होंने आंसुओं से भगवान से यही प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, ये दृश्य मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इससे तो कोई मोहिनी स्वरूप आपका दिखाई है। और उसके बाद उन्होंने चौथा दृश्य देखा कि किस तरह इस संसार का महान परिवर्तन हो रहा है और पवित्र आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती जा रही है और कोई न कोई देव या देवी का स्वरूप लेकर के एक बहुत सुंदर दैवी दुनिया की रचना होती है। और फिर एक आवाज सुनाई दिया कि निकट भविष्य में ऐसे महाविनाश के बाद ऐसी सुंदर दुनिया तुम्हें बनानी है, तुम्हें बनानी है, तुम्हें बनानी है। पिताश्री जी को समझ में नहीं आया कि आखिर भी ये दृश्य कौन दिखा रहा है, कौन इतने दिव्य अनुभव करवा रहे हैं और आखिर भी भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। वहां से फिर वो चले कलकत्ता पहुंचे और जब वो अपने हीरे जवाहरत के दुकान में बैठे, जब हीरे जवाहरत को देखा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे ये तो पत्थर है। उनका मन नहीं लगा, वहाँ का बिजनेस उनका पार्टनर देख रहा था, पार्टनर से कहने लगे कि मुझे ये पत्थर नजर आ रहे हैं और मैं अभी ये बिजनेस में रहना नहीं चाहता हूँ। हिसाब कर दीजिए और मुझे अपना हिस्सा दे दीजिए, मैं अलग होना चाहता हूँ। उतने में उनके पास में एक टेलीग्राम आया हैदराबाद सिंध से कि उनके चाचा की तबीयत बहुत खराब हो रही है और उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि वो दादा से मिलना चाहते थे। सारा पार्टनर के ऊपर छोड़ करके पिताश्री जी वहाँ से रवाना हुए और हैदराबाद सिंध के लिए, परंतु जब वहाँ पहुँचे तो चाचा ने शरीर छोड़ दिया था। लेकिन जब बॉडी रखी थी और उस समय बॉडी के पास बैठे थे और ये पूर्व दिव्य अनुभव का चिंतन भी चल रहा था, वो बातें भी मन के अंदर आ रही थी कि उसी समय उन्हें एक और दिव्य अनुभव हुआ कि चाचा के अंतिम समय की स्थिति आत्म साक्षात्कार हुआ। ये शरीर और आत्मा दो चीज है, आत्मा प्रकृति के मध्य में है और शरीर छोड़ने से पहले वो सब इंद्रियों की विदाई लेती है। आत्मा पैरों के अंगूठे तक जाती है और वहां से एक एक इंद्रियों की विदाई लेते लेते पुनः वो ब्रुकुटी के मध्य में आकर के वहां से निकल जाती है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो सबसे पहले पैर ठंडे हो जाते हैं, फिर बदन और लास्ट में ये हिस्सा ठंडा होता है, क्योंकि जब तक आत्मा उस स्थान पर है तब तक एक गर्माहट रहती है। कहने का भावार्थ के आत्म अनुभव तब किया, उस समय उनके अंदर यही आया, मैं भी आत्मा। पत्नी को देखते थे तो लगता था यशोदा भी आत्मा है, बच्ची को देखते थे, बेटे को देखते थे, नारायण भी आत्मा है, राधिका भी आत्मा है। हर परिवार के सदस्यों को आत्मभाव से देखने लगे और बहुत सुंदर अनुभव होते थे।